आगे मालिक, मालिक और मलिक, ये दोनों किरात हैं और दोनों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आपने बाज़ दफ़ा कारियों को नमाज में मालिकी यौमे दी, यानी मालिक खड़ी अलिफ नहीं है, मलिक सिर्फ जबर हो, इसके साथ पढ़ते हुए भी सुना होगा। और दोनों ही खूबसूरत हैं और दोनों तरह से ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और दोनों के माने बहुत खूबसूरत हैं। मालिक मालिक से है, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ का मालिक होना, मिल्कियत होना, और मलिक बादशाह को कहते हैं। अब हम नाम भी रख देते हैं मलिक साहब, तो मलिक बादशाह को कहते हैं, और वो बादशाह जो बाइख्तियार हो, जिसके पास इख्तियार भी हो। अब मालिक होना यानी वो मालिक है, इसका मतलब है कि जो चाहे करे, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई चीज़ का मालिक होता है ना। अब आप कहते हैं हम तो इतनी टेम्प्रेरी और फिर भी पूरे मालिक नहीं होते, तब भी हम कहते हैं मैं तो इस घर की मालिक हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। कोई समझता है मैं इस जिस्म की मालिक हूँ, मेरी जो मर्जी मैं करूँ। तो जो किसी चीज़ का मालिक होता है वो फिर समझता है कि उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तो हकीकी मालिक है, वो जो चाहे करे उससे कोई सवाल नहीं हो सकता, वो जिससे जैसा चाहे करे कोई भी उसको पूछ नहीं सकता। और मलिक में क्या है, जो बादशाह है। अब बादशाह बा इख्तियार, यानी ऐसा बादशाह नहीं जिसके खुद के हाथ ही बंधे में हो, वो नहीं, वो खुद बा इख्तियार है। अरे अब वो जो चाहे फैसला करे। बादशाह के पास भी क्या होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, उससे ऊपर कोई होता नहीं है ना। तो बादशाह का ये बड़ा, यानी उसके पास पावर होती है, बादशाहत जो है वो पावर की निशानी, हुक्मरानी की निशानी। तो वो मालिक भी है और मलिक भी है, किसका, यौमिद्दीन, दीन, यौम दिन, दीन बदले के, बदले के दिन का वो मालिक भी और मलिक भी है। यानी उस दिन का मालिक है, उस दिन जो चाहेगा करेगा, उससे कोई पूछ नहीं सकता। और फिर वो बा इख्तियार है, जो कह देगा वैसा ही होगा, बादशाह है उस दिन का, उसकी अथॉरिटी होगी, उसकी पावर होगी, उसके हाथ में सबको फैसले होंगे। आज इंसान समझता है मैं घर का मालिक, पैसे का मालिक, या हकूमत में कोई ओहदा मिल जाए तो मैं इस वजारत का मालिक, वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लगता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये तो अल्लाह ताला ने एक छोटा सा इख्तियार उसको दिया हुआ है, उस जिससे वो घुमंड में आ जाता है, समझता है मैं बा इख्तियार हो गया, मेरी अथॉरिटी हो गई, मेरे पास पावर आ गई। हालांकि पावर नहीं है उसको, तो छोटा सा दिया है बिल्कुल। बाज दफा तो दुनिया में ही छिन जाता है, दुनिया में ही किसी के पास नहीं रहती पावर, या नहीं रहता पैसा, या अपने जिस्म में कमी आ जाती, बीमार हो जाता है, या जिस्म में कोई ऐसी खराबी पैदा हो जाती। अच्छा अब इंसान समझता है मैं पावर में हूं, अपना जिस्म भी अपना ना रहा तो किस चीज की पावर है। घर छिन जाते हैं, या कभी इंसान को कोई चोर डाकू लूट के ले जाते हैं पैसा उसका। तो इंसान की जो मिल्कियत है ना, वो बहुत टेम्प्रेरी है और पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मिल्कियत सिर्फ अल्लाह ताला की। अब आप मसलन है अपने अपने आप को समझते, चलो और कुछ चीज को नहीं, अपने जिस्म को ही हम समझते, बाकी चीजें फिर भी आउटसाइड आउटसाइड हैं, तो हमें हो सकता है कोई चीज छीन जाए, लेकिन हम अपने जिस्म को तो अपना समझते हैं। अगर हम अपने जिस्म के मालिक है ना, तो फिर ये बीमार क्यों होता है? अगर अपने जिस्म के मालिक है तो दिल धड़कना बंद क्यों हो जाता है, गुर्दे क्यों फेल हो जाते हैं, बिनाई क्यों कमजोर होने लगती है, नाखून क्यों बढ़ने लगते हैं, बाल क्यों झड़ने लगते हैं, ऊंचा क्यों सुनाई देने लगता है? आप तो मालिक हैं, तो सब सब चीजें ऐसी तो नहीं होनी चाहिए कि आप नहीं चाहते। और तो और सबसे बड़ी बात, बुढ़ापा क्यों आने लगता है? कोई भी नहीं बूढ़ा होना चाहता, लेकिन वो बूढ़ा हो जाता है, उसका जिस्म लागर हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो सोच लें, अगर अपने जिस्म के भी मालिक नहीं तो और कौन सी चीज फिर रह गई जिसके आप मालिक होंगे? तो वो मालिक है यौमुद्दीन का, इंसान किसी चीज का भी मालिक नहीं है। ये सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए एक समझ लें एक ख्याल दे दिया गया कि चलो तुम इस चीज के, तुम्हारी मिल्कियत में एक छोटी टेम्परेरी एक काम दुनिया का चलाने के लिए एक मिल्कियत का जिसको कहते एहसास दे दिया गया, ठीक है। वरना असल में कोई भी मालिक नहीं है, और जो मोमिन है वो इस बात को सही समझता है, जो काफिर है वो तो अपने आप को समझता है कि मैं ही हर चीज का मालिक हूँ। जो मोमिन है वो हमेशा ये याद रखता है कि मैं तो किसी चीज का मालिक नहीं, मेरा रब ही है जो मालिक है हर चीज का, और जो कुछ मेरे पास भी है उसका भी मालिक वो ही है, मैं थोड़ी मालिक हूं, ठीक है। ये फर्क है काफिर और मोमिन की सोच में। अब यहां पे कहा गया वो मालिक है किसका, यौमुद्दीन का। यौम दिन, हम इसका तर्जुमा वैसे दिन करते हैं, लेकिन यौम जो है ना वो टाइम फ्रेम के लिए है यहाँ पे, टाइम फ्रेम देखिए। क्योंकि जैसे यौम, अब हमारा दिन है 24 आवर्स का, चांद पे चले जाएं किसी और आवर्स का है, मार्स पे चले जाएं कोई और आवर्स का दिन है, कहीं इससे कहीं ज्यादा लंबे दिन है, कहीं इससे छोटे दिन होंगे, तो हर जगह तो 24 आवर का दिन नहीं है, तो उसको आप फिर क्या कहेंगे? वो दिन है लेकिन वो कोई 48 आवर्स का है, फिर क्या कहेंगे? 2 दिन तो नहीं कहते हम, कहते ये भी दिन है। तो दिन ड्यूरेशन है, टाइम फ्रेम है, यहां पे 24 आवर का ही है, किसी और जगह कुछ और होगा। कयामत के दिन दिन की लेंथ कितनी होगी? ये वो दिन नहीं है जो हमारा 24 आवर का है, क्योंकि ये तो जमीन का दिन है, वो तो कोई और ही दुनिया होगी, वो आखरत है। वहां का जो दिन है वो डिपेंड करता है कितना लंबा है इंसान की ईमान के ऊपर। देखिए जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उसका लिए वो दिन उतना ही शॉर्ट होगा, जितना ईमान कमजोर होगा या काफिर होगा तो उसके लिए उतना ही लंबा होगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के लिए कयामत का दिन असर और मगरिब के दरमियान का, इतना शॉर्ट है। आप दुनिया की मिसाल ले लें, आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो क्या हर एक को एक जितना टाइम लगता है बाहर निकलने? नहीं, सब एक ही जगह से आए होते हैं लेकिन निकलने का टाइम सबका फर्क होता है। जो VVVIPs है वो तो जहाज से उतरते ही चलते ही चले जाते हैं बाहर, कोई उनको पूछने वाला ही नहीं होता, रेड कारपेट बिछा दिए जाते। जो बिजनेस क्लास वाले होते हैं उनके सामान जल्दी आ जाता है, वो लाइन में भी पहले खड़े होते हैं लिहाजा वो भी जल्दी फारिग हो जाते हैं। अब जो इकोनॉमी वाले हैं उनमें कोई आगे है कोई पीछे है, किसी का जल्दी आया किसी का देर से आया, किसी को उन्होंने बिठा लिया और आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा दिन बिठाए रखा, कोई क्रिमिनल था उसको वहीं पे उन्होंने धर लिया वहीं अरेस्ट कर लिया। कयामत के दिन भी जो VVIPs होंगे, अगर ये मिसाल तो नहीं हम दे सकते कोई भी उस दिन के साथ, लेकिन जैसे आपको समझाने के लिए जो VVIPs होंगे ना वो तो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, उनके लिए ये दिन बहुत ही हल्का होगा। जो फर्स्ट क्लास वाले, जैसे मैं आपको कहा बिजनेस क्लास वाले हैं, वो भी साबिकून अल अव्वलून, थोड़ा सा हिसाब लेके वो भी आगे चले जाएं। बाकी जो इकोनॉमी वाले हैं, जो मिली जुली जिंदगी गुजारने वाले हैं, कभी नेकियां कर ली कभी गुनाह कर ली और फिर कहा ओहो तो कौन सा मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, फलां तो इससे भी ज्यादा करता है, इनका पता चलेगा कि असल तो ये है कि ये जब आमाल में तुलेंगे तो क्या इनके गुनाह ज्यादा होते हैं या नेकियां। तो जो मोमिन है यानी जिनका ईमान बहुत पाए का था, उनके लिए तो कैलूला के वक्त तक तो वो जन्नत में भी चले जाएंगे, यानी दिन में जो कैलूला का वक्त होता है ना हमारा सुबह से लेके यानी जोहर के बाद, इतना टाइम के अंदर तो वो जन्नत में जा भी चुके होंगे, अभी तक को लोग वहीं पे खड़े अपना हिसाब दे रहे होंगे। और कईयों के लिए 50,000 साल के बराबर दिन गुजरेगा, इतना ज्यादा सख्त होगा, इतना ज्यादा सख्त होगा कि वो लोग कहेंगे या अल्लाह हमें इससे तो बेहतर है जहन्नुम में डाल दे, लेकिन ये इंतजार तो खत्म हो। देखिए जो इंतजार की घड़ी होती है वो बहुत मुश्किल होती है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होना है, अब मेरे साथ क्या होना, अब आया अब आया, अब मुसीबत अब मुसीबत, अब पता नहीं मेरे साथ होगा क्या। उस तकलीफ से इंसान कहता है, जैसे कोई किसी को तकलीफ होती है वो कहता है कि इसे बेहतर तो होकर मैं मर ही जाऊं, ऐसे होता है ना। तो जो उस दिन को काट रहा है ना वो इतनी मुश्किल के अंदर होगा, इतनी बुरे हालों में होगा, कहेगा इससे बेहतर तो है कि मैं जहन्नुम में चला जाऊं, क्योंकि ये इंतजार आसान नहीं होगा। इंसान कांप रहा होगा, सांस घुट रहा होगा, तपिश होगी, गर्मी होगी, हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा होगा, उसको पता नहीं होगा अब मेरा होगा क्या। तो यौम को आप सोच लें कि फिर इंसान अपने लिए क्या चाहता है, कि ये दिन मेरे लिए कितना हो। और दीन, जैसे मैंने आपको बताया कि दीन मजहब को भी कहते हैं, मगर फैसले के लिए भी, जजमेंट के लिए भी, बदले के लिए, इसीलिए जजाओ सजा का दिन कहते हैं ना, बदला, जजा मिलेगी या सजा मिलेगी, क्या बदला मिलेगा, जो अमल होगा वैसा ही बदला होगा। तो अल्लाह ताला मालिक भी है उस दिन का और बादशाह भी है उस दिन का, यानी उस दिन नहीं किसी की मिजाल होगी कि वो कुछ बोले, वो कुछ कहे, वो कहे कि मैंने तो फलां को लेकर जाना है अपने साथ, मैं तो नहीं मानता ये, और ये तो मेरे मुरीद हैं और ये इनको तो मैं लेकर ही जाऊंगा, और अल्लाह माफ करे, अस्तग़फिरुल्लाह ही रब्बी, ऐसे ऐसे शेर बनाए हुए हैं, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसी बातें कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि मालिक यौमिद्दीन कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मालिक उस दिन के, अल्लाह ताला है। जो बंदा नमाज में ये कह दे कि मालिक उस दिन का अल्लाह ताला है, और उसके बाद वो ये शेर पढ़े, इससे ही पता चलता है कि हमारी जहालत की इंतहा क्या है। और जब हम ये सोचते हैं फलां का पल्लू पकड़ लूंगा तो मैं पार हो जाऊंगा, मालिक उस दिन का वो ही है जिसको चाहे छोड़ दे, चाहे किसी को कह दे तुम इसकी सिफारिश कर दो, उसने उसने छोड़ना ही है उसको, इसलिए कहता है तुम्हें इज्जत मैं देता हूं, तुम सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश पे मैं छोड़ूंगा। यानी ये नहीं कि कोई खुद ही उठ के कड़ा हो जाए और कहे जी मैं जी सिफारिश करता हूं, आज फलां मेरे मुरीद और फलां मेरे शागिर्द और फलां मेरे इस बंदे को कोई नहीं लेकर जा सकता जहन्नुम में, मैं इसकी सिफारिश करने के लिए खड़ा हो गया हूं या मैं इसको छुड़ा दूंगा। अल्लाह अकबर, अल मुल्कु यौम इदिल्लाह, बादशाह तो उस दिन सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, मुल्क अल्लाह का ही होगा। अमा अदरा कमा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लि नफ्सिन शैया, अल्लाह ताला ने फरमाया ना तुम्हें क्या पता कि क्या दिन है वो यौमुद्दीन, क्या चीज है दिन, कोई नफ्स किसी को कोई फायदा नहीं दे सकेगा, कोई किसी के काम ना आ सकेगा। और अल्लाह ताला उस दिन का क्यों कहा गया, क्या यौमुद्दीन का अल्लाह ताला मालिक है, बादशाह है, तो क्या आज के दिनों का क्या कौन बादशाह है, आज के दिनों का भी अल्लाह ताला ही मालिक है, लेकिन क्यों उस दिन का स्पेसिफिकली कहा, क्योंकि वो इट्स अ ग्रैंड डे, ग्रैंड गैदरिंग, इतना बड़ा दिन है वो, उस जैसा दिन ना कभी आया ना कभी आएगा। कैसे? इसलिए कि इंसानियत की तारीख में आप देख ले, कभी ऐसा नहीं हुआ, इंसानियत की क्या छोड़े, इंसानियत की तो कायनात की तारीख में देख ले, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर इंसान जो भी पैदा हुआ, हर जिन, हर फरिश्ता, हत्ता के हर जानवर भी सब इकट्ठे हो जाएं एक जगह, कभी जो पैदा हुआ किसी जमाने में भी हुआ, उस सब एक गैदरिंग में हूँ, एक जगह पे हूँ, और सब एक अदालत में अल्लाह ताला के हजूर खड़े में हूँ। कभी ऐसा हुआ? नहीं। कभी होगा? नहीं। वो उस दिन का मालिक है, तो फिर और दिन तो वो छोटे छोटे दिन है ना, उनका तो वो मालिक है ही, यानी एक बड़े दिन का बता के आप वो बता दे, सारे दिनों का ही वो मालिक है, लेकिन वो दिन का वो मालिक है कि उससे बड़ा दिन तो और कोई नहीं है। तो जो बदले का दिन है, बहुत सख्त दिन है, इसको यौम सकीला कहा गया, बहुत भारी दिन, वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर दे, इस कदर सख्त दिन है। अल्लाह अकबर। तो जो उस दिन का मालिक, वो सारे ही दिनों का मालिक है। जो आम आम दिन है उनका तो वो मालिक है ही, वो तो उस दिन का भी मालिक है। जैसे कहें कि कोई कोई बड़ा मुल्क का बादशाह है, तो कहें कि अच्छा क्या वो इस जगह का भी, इस छोटे से प्लॉट का भी बादशाह है? तो आप कहते हैं इसका क्या, वो तो पूरे मुल्क का बादशाह है। तो अल्लाह ताला बाकी दिनों का क्या, वो तो यौमुद्दीन का भी बादशाह है, मालिक है। बाकी दिन की क्या हैसियत है? तो वो दिन जो बदले का दिन है, यानी ऐसा दिन जो बोया वो काटोगे, जो बोओगे आज कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप बीज डालें, मसलन है कि सेब का, और ऊपर माल्टे निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता। आप चावल का बीज डालें तो गंदम निकल आए, जो डालोगे वो ही काटोगे, बदला उसी का मिलेगा। इसीलिए दुनिया को कहा गया ये आखरत की खेती है, इस खेती में जो बोलोगे वहां जाके पालोगे, कोई सरप्राइजेस थोड़ा ही है। हर एक को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इंसान अपने नफ्स के ऊपर खुद जानता है। वले इंसान वाला नफ्स ही बसीरा वलो अल्का मआदीरा। इंसान बड़ी अच्छी तरह जानता है वो क्या कर रहा है, चाहे वो कितने बहाने करता रहे। तो हम हर जमाने, हर दौर का, हर इंसान, कयामत तक का आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, हर इंसान वहां पे मौजूद होगा, हर जिन मौजूद होगा। अब बताओ उस दिन का मालिक अल्लाह ताला है। सोचो फिर क्या बनेगा जब वलकद जीतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। तुम लाए जाओगे उस दिन फर्दन फर्दन, अकेले अकेले, जैसे हमने तुम्हें पहली दफा पैदा किया था, अकेले आओगे, नंगे बदन नंगे पैर। इसे पता चला ना, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह तआला का था, तुम तो इसी तरह पैदा हुए थे। और आज भी देखो कहाँ गई वो तुम्हारी चीजें, जिनको तुम कहते थे मैं, मेरी कुर्सी, मेरे पैसा, मेरा इकतदार, मेरे बैंक बैलेंस, मेरी जायदादें, मेरे अकाउंट, कहाँ है सब कुछ? ये सब इल्यूजन है, ये सब कुछ फहमियां हैं कि मैं, पता नहीं खाम ख्यालियां हैं कि मैं इन चीजों का ओनर हूं। कहाँ है फिर उस दिन क्यों खाली हाथ उठ के आ गए? अब पता चलेगा तुम्हारा तो कुछ भी नहीं था, हत्ता कि जिस्म भी खिलाफ बोलने लगेगा, पता चलेगा जिस्म भी तो मेरा नहीं, और फिर क्या मेरा रह गया? सब कुछ अल्लाह ताला का था, है और होगा। ये तुम्हारा सिर्फ गुमान था कि मैं मेरा, सारी जिंदगी यही करते रहते ना, मैं ऐसी, मैं ऐसी, मेरी चीज ये, मेरा चीज, मेरा वो, सब मैं और मेरा, सब खत्म हो गया, ना मैं रही और ना मेरा। यहां तक ये तीन आयात जो हैं, ये तीन मैसेजेस देती हैं। नंबर वन अल्लाह ताला की तौहीद का, नंबर टू रिसालत का, और नंबर थ्री आखरत का। ये थ्री ईमानियात में से ये जो तीन ईमानियात है वो यहाँ पे कवर हो गए, तौहीद, रिसालत और आखरत। कुरान करीम में इन चीज़ों के ऊपर ही जोर दिया गया। पहली आयत तौहीद बताती है, क्योंकि रब एक है, आलमीन बहुत सारे जहान है, उन सारों के बहुत सारे रब नहीं है, रब तो पालने वाला तो खालिक और मालिक और पालने वाला तो एक ही है, तो तौहीद आ गई। फिर अर रहमान अर रहीम, इसमें इमाम राजी ने इसको बताया है कि ये डायरेक्टली तो नहीं रिसालत के ऊपर बात है, लेकिन अर रहमान अर रहीम, अल्लाह ताला जो रहमान अर रहीम है, खुद सोचो वो अपने बंदों को क्या भटकने के लिए छोड़ देगा, कि उनको रास्ता ही नहीं पता और वो भटकते रहे जिंदगी में, गुमराहियों में पड़े रहे, हिदायत का उनको सामान ही ना मिले, उनको कोई रहनुमाई ना मिले, कोई गाइडेंस नहीं मिले और एंड अप जहन्नुम में हो जाए, ये तो नहीं ना रहमत। तो उसकी रहमत की ये लाजमी बात है कि उसकी ये रहमत का यानी मजहर है कि उस, या उसकी रहमत का हिस्सा है इस ये कि वो इंसान को रास्ता बता दे, दिखा दे, समझा दे, ताकि कहीं इंसान जहन्नुम में एंड अप ना हो जाए। वरना तो वो छोड़ देता अगर ऐसे ही, और सारे इंसान जो मर्जी जिसका दिल आता करता, वो तो सारे ही जहन्नुम में चले जाते, उनको रास्ता ही नहीं मिलना था। तो ये उसकी रहमत है कि उसने रसूल भेजे, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट इंसानों से बात नहीं करता, उसने रसूल भेजे जिन्होंने बंदों तक पैगाम पहुंचाया। तो इसमें रिसालत पर ईमान की बात है, ये अल्लाह की रहमत है कि उसने दुनिया में रसूल भेजे। अगर वो सिर्फ अपने कलाम भी भेजता तो बात ना बनती, इसलिए कि रसूल आके समझाएगा, बताएगा लोगों को, उस पे चल के दिखाएगा अल्लाह के फरामीन के मुताबिक, तभी लोगों को समझ आएगी ना। तो रोल मॉडल्स भेज दिए और अपना पैगाम उनके जरिए भेजा। और तीसरा, ईमान बिलाखिरा मालिक यौम दीन में, कि ये अल्लाह ताला मालिक है उस दिन का। अब देखें, जब इंसान अर रहमान अर रहीम पढ़ता है तो उसके दिल में क्या आ जाता है? पहले चलें पहले से शुरू करते हैं। आयत वन जब आपने पढ़ी, रब्बुल आलमीन, आपके दिल में क्या आया? वो पालने वाला, बड़ा आपकी हर चीज का ख्याल रखने वाला, आपके ऊपर मेहरबानियां करने वाला, नेमते निछावर करने वाला, मोहब्बत आई ना अल्लाह ताला की। फिर उसके बाद आप सोचते हैं, अल्लाह ताला ने तो इतनी मोहब्बत से मुझे पाला, मैंने क्या किया? इतनी नाफरमानी और गुनाह, और मैं अपने आप को गुनाहों से बचा ही ना सका। तो फिर आता है अर रहमान अर रहीम, तो इंसान को क्या आता है दिल में जब आप सोचते हैं अल्लाह इतना रहम करने वाला है, सारे गुनाह माफ कर सकता है, तो क्या आता है दिल में? बात आती है ना उम्मीद की, कि मुझे भी उम्मीद लग गई, अल्लाह तू तो इतना मेहरबान है, मैं भी जन्नत तक जा सकती, मेरे भी गुनाह माफ हो सकते। लेकिन जब इंसान इतना पढ़ लेता है ना सिर्फ, और वो ये सोचता है वो तो बहुत मेहरबान है, इतना 99 रहमतें उसके पास हैं, माँ से ज्यादा मेहरबान है, बस अब तो खुली छुट्टी मुझे मिल गई। जो इंसान ये सोचे, अब मुझे खुली छुट्टी मिल गई, मैं जो मर्जी करूं, हाँ जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, इससे बाज आ जाए, नहीं जी अल्लाह ताला तो गफूर और रहीम है, आपको क्या पता, हम जैसे कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ताला गफूर रहीम। तो इस गलत फहमी में ना रहना कि वो रहमान और रहीम तो है, लेकिन वो मालिक यौमिद्दीन भी है, एक दिन भी है बदले का। देखें, इंसान को ये भी जरूरी है कि उसके पास अल्लाह ताला की मोहब्बत हो जो पहली आयत में, नंबर टू अल्लाह ताला से उम्मीद हो जो दूसरी आयत में, और नंबर थ्री अल्लाह ताला का खौफ भी होना चाहिए। ये अगर कोई इंसान सिर्फ यहां तक ही रहे कि बस वो तो रहमान और रहीम है और वो तो मेरा रब है और अब तो कुछ होगा ही नहीं, मैं जो मर्जी करता रहूं, तो फिर तो इस दुनिया के अंदर हर कोई अपनी अपनी चलाएगा, और फिर देखो कि इस दुनिया के अंदर कोई अमनो अमान नहीं रहेगा, कोई जो चाहे करेगा, किसी के हकूक मारेगा, किसी को कत्लो गारत करेगा, किसी से छीना झपटी करेगा, जो मर्जी करेगा। वो तो सोचेगा मुझे खुली छुट्टी मिल गई। एक मुल्क भी इस तरह नहीं चल सकता। देखिए, किसी मुल्क में अगर कह देना आप कि देखिए अब से सारा वक्त आपके साथ बहुत रहम किया जाएगा, किसी को पकड़ा ही नहीं जाएगा, जब पकड़ भी लेंगे तो हमने रहम कर देना, हमने सारों को ही छोड़ दिया करना, बस प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जो लोग कहते हैं ना हमारा खुदा तो बस लव है, एंड क्रिश्चियन ज्यादातर ये कहते हैं हमारा गॉड तो गॉड ऑफ लव है, सिर्फ गॉड ऑफ लव कहने से बात नहीं बन सकती। आप एक मुल्क भी नहीं चला सकते सिर्फ लव के साथ, फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर होता क्या है वहां पे। वहां पे मादर पिदर आजाद होंगे सब, और सब अपना अपना कुछ करेंगे। क्यों नहीं दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा जिसमें कोई कानून ही ना हो? हर मुल्क में कोई ना कोई कानून तो है ना। कोई कानून किस लिए रखा जाता है? ताकि लोग सीधे रहें, क्योंकि इंसानों की ये फितरत है कि उनको बिल्कुल खुली छुट्टी मिल जाए तो वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर हर कोई अपनी मनमानी करता है। कानून का डर होना जरूरी होता है, सजा का खौफ होना जरूरी होता है, तभी सिस्टम सही चल सकता है। और अल्लाह ताला की इस दुनिया के अंदर अगर ऐसा कर दिया जाए कि बस अर रहमान और रहीम है, अब तुम लोगों को छुट्टी है, तो फिर देखें कि यहाँ पे रहना भी दूभर हो जाए। तो वो जो अल्लाह ताला का डर होना है वो भी जरूरी है, इसीलिए फरमा दिया मालिक यौमिद्दीन, वो जजा और सजा के दिन का मालिक है। और इंसानों को इन सभी चीजों की जरूरत है, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी होनी चाहिए, उनके दिल में उम्मीद भी होनी चाहिए, कभी भी ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, और साथ खौफ भी होना चाहिए, डर भी होना चाहिए। से हदीस में आता है कि कोई एक बंदा होगा सिर्फ एक बालिश दूर रह गया होगा जन्नत से, और वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। हाँ, इंसान को डर लगना चाहिए, इंसान को ये डर होना चाहिए कि अगर अंबिया और सहाबा और वो इतना ज्यादा डरते थे अल्लाह के नेक बंदे हो के, और इतना अल्लाह ताला के अजाबों के ऊपर उनको रो रो के हिचकियां बन जाती थी, तो मेरे तो गुनाह बहुत ज्यादा है, तो ये खौफ होना चाहिए, ये हेल्दी है, क्योंकि इसी से भी इंसान नेकियों की तरफ भागेगा और गुनाहों को छोड़ेगा। वरना तो इंसान कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, गुनाह करते भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे आजकल हमारे ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है, वो रहमान और रहीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो करते चले जाते। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, एक तरफ मोहब्बत है जो टॉप है, एक तरफ उम्मीद और एक तरफ खौफ, इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। ये तीनों बातें यहां पे बता दी गई। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। अच्छा, अब ये जो यहां पे ये स्टेटमेंट आई है ना, अभी तक तो अल्लाह ताला की तारीफ हुई, उसकी सना बयान हुई, उसकी बुजुर्गी बयान हुई, अब जो बात आ रही है ये असल में हलफ है। हलफ उठाते हैं ना, जिसको कहते हैं ओथ, ओथ लेते हैं ना, आप कभी लिया होगा आपने अगर ओथ, एक ओथ होता है फर्मा बरदा वफादारी का, फर्मा बरदारी का नहीं, वफादारी का। आप किसी मुल्क की सिटीजनशिप लेने लगते हैं तो वो आपसे ओथ लेते हैं कि आप हमारे वफादार रहेंगे, ये समझ लें एक वफादारी का ओथ है। इय्याका नअबुदु, इन बंदा कहता है सिर्फ तेरी नअबुदु हम इबादत करते हैं। अच्छा, अब ये बात ऐसे भी हो सकती थी, नअबुदु का हम इबादत करते हैं का तेरी, नअबुदु ये जो लफ्ज है ना, नअबुदु हम इबादत करते हैं, इसके आगे का लगा देना तो तेरी, ये भी सही जुमला है, लेकिन यहां पे आया इया का, एक तो का पहले आ गया और इया आया, सिर्फ तेरी यानी तेरे सिवा किसी और की हम इबादत करते ही नहीं है, बंदगी है तो सिर्फ तेरी। अब देखे ना, जब इंसान ने ये पढ़ा ना कि मालिक यौमिद्दीन, तो उसके दिल में डर हुआ, अल्लाह मैं उस दिन कैसे बचूंगा, कैसे बचूंगा, तेरे सिवा तो मेरा कोई भी नहीं जो कि मुझे बचा सके, तू कि उस दिन का मालिक तो तू ही है। अब वो फौरन झुक जाता है, अल्लाह मैं तो सिर्फ तेरी इबादत करता हूं। इया का कह के ना इसमें जोर पैदा किया गया, जब इया कहते सिर्फ तेरी गुलामी करता हूं, बंदगी सिर्फ तेरी करता हूं, ये वो हलफ उठा रहा है, ये वो कसम खा रहा है, अल्लाह मैं जैसा भी हूं, गंदा हूं, मंदा हूं, गुनाहगार हूं तो सिर्फ तेरा ही ना, बहुत गुनाहगार हूं, मगर तेरे सिवा तो मेरा कोई नहीं। सोचे, सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है, और ये स्टेटमेंट जो है, ये आयत जो है, ये पूरी सूरह फातिहा का खुलासा है। ये है हलफ वफादारी का। और जिसने इस हलफ को पूरा कर दिया, जो उसने उठाया है, तो फिर उसकी निजात हो जाएगी कयामत के दिन। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज से फरमाया, ए मुआज, तुम जानते हो अल्लाह का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह ताला पर क्या है। हजरत मुआज फरमाने लगे, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बंदों पर हक ये है। हक का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका राइट है। अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि वो उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। जब बंदे ये कर लेते हैं ना, अब बंदों का अल्लाह पे हक हो जाता है। अब बंदे वैसे तो अल्लाह पे कोई अपना हक नहीं जिता सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद इसको बता दिया कि अब बंदों का हक है अल्लाह ताला पर, यानी अब अल्लाह ताला की जिम्मेदारी बन जाती है क्या कि वो इन बंदों को अजाब ना दे। अल्लाहु अकबर। ये वो बंदे हैं जो सिर्फ एक अल्लाह की गुलामी के लिए अपने आप को सपोर्ट कर देते, खालिस उसके होते हैं, चाहे वो कितनी भी उनसे गुनाह हो जाए। लेकिन फिर जब वो अल्लाह की गुलामी में आ गए और उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, हम अल्लाह के जिम्मे है कि फिर इनको अजाब न दे। हदीस कुदसी में है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास आए और तेरे ऊपर इतने गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं कि तेरे गुनाह से जमीनों आसमान भर जाए, लेकिन तूने मेरे साथ शिर्क नहीं किया, तो मैं तेरे सारे ही गुनाहों को माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। अला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं होगी कि ये इसने तो इतने गुनाह की। अब नाबुदू इबादत, हम जो लफ्ज बोलते हैं ना, उसी से आईन बादा इबादत करना, हम तेरी इबादत करते हैं। इबादत क्या चीज होती है? क्या हमने कुछ इसको समझ लिया है? जब हम इबादत सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि इबादत का मतलब है कि ये बस आपने नमाज पढ़ ली 5 दफा दिन में, साल में 1 दफा रमजान के रोजे रख लिए, ज़कात हज कर ली और तौहीद के अकीदे पे बस आपकी इबादत हो गई, पूरी हो गई इबादत, हम तो इबादत करते हैं। हालांकि इबादत अब्द से है। अब्द कहते हैं गुलाम को। गुलाम वो होता है जिसका अपना कुछ नहीं होता, वो ना अपनी मर्जी से खाता पीता है, ना अपनी मर्जी से सो सकता है, ना बैठ सकता है, ना कोई अपना खुद स्केड्यूल बना सकता है, कोई भी नहीं। सारा कुछ उसकी जिंदगी का ना उसके मालिक के हवाले होता है। जो मालिक कहता है उसने वो ही करना होता है। अब आप मुझे बताएं, जब हम ये कहते हैं या का नाबुदू, तो क्या हम वाकई अल्लाह ताला के अब्द बन के रहते, या हर बात के ऊपर हमें एतराज आता है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये क्यों होगा, वो क्यों होंगे, हर बात में हमने सवाल खड़ा करना होता। आप अगर किसी जगह के बॉस है ना, आपको कभी भी नहीं पसंद आएगा। आप खुद बताएं कि मतलब हमारे बच्चे ही हमसे पूछे, पहले हमें ये बताएं आपने ऐसे क्यों किया, पहले आप ये बताएं आप कहाँ जा रही हैं। अगर अच्छा कुछ किसी को पूछ भी ले ना बच्चे, तो वो माएं भी नाराज हो जाती हैं, क्यों पूछ रहे हैं मुझे, आप क्यों जा रही हैं, क्या करना है आपने जाके, आपने ये चीज यहाँ पे क्यों ऐसे रखी हुई, इस चीज को यहाँ पे लटकाया क्यों है, आप इस वक्त क्यों नहीं उठी। आपको गुस्सा आता है कि तुम कौन होते मुझे पूछने वाले, मैं जैसे मर्जी करूं। हालांकि आप, वो भी आपकी तरह के इंसान है, बस सिर्फ वो आपके बच्चे हैं, या आप बॉस हैं तो वो आपके सबॉर्डिनेट हैं। आप खुद सोचें कि इंसान की मिजाल कैसी है और उसके अंदर कितनी जुर्रत है और अल्लाह ताला कितना रहम है इन बंदों के ऊपर जो जुबाने खोलते हैं और कहते हैं ऐसे क्यों है, इस तरह क्यों होना चाहिए, फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों करके दे दिया, फिर उसने बनाया ही क्यों हमें, फिर उसने अगर ये करना था तो ऐसे क्यों किया। ये कैसी बातें हैं, तो कभी समझ ही नहीं आती कि ये मुसलमान के मुंह से निकल ही कैसे सकता है, जो कहता है या क्या ना आबुदू, जो कहता है रब्बुल आलमीन है, तू कैसे निकल सकता है? और गुलाम भी शायद सही लफ्ज नहीं है, बंदगी कहना सही लफ्ज है, क्योंकि गुलाम भी अपने आका से जो है ना कभी मोहब्बत नहीं करता होता। गुलामों को अपने आका से ज्यादातर आप देखे ना तो उनको अच्छा नहीं लगता कि ये हमारा मालिक है, वो उससे नफरत करते हैं एक तरह से ना कि इसकी हम गुलामी में हैं। लेकिन जब हम कहते हैं बंदगी, तेरी बंदगी करते हैं, इबादत का मतलब बंदगी, तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें गुलामी भी है लेकिन इंतहा दर्जे की मोहब्बत भी है। इमाम इब्ने तैमिया ने इबादत का जो वर्ड है ना, इसका जो माना बयान किया ना, उन्होंने कहा उसमें दो चीजें होती हैं इबादत के अंदर। अब आप इसके ऊपर अपने आप को रख के देख, इंतहा दर्जे की मोहब्बत प्लस इंतहा दर्जे के जुल और खुदू, यानी अपने आप को झुका देना, जलील कर देना, बिछा देना, नीचा कर देना, ये है इबादत। खुद मुझे बताएं, जिनको इतने तराज आते हैं हर चीज के ऊपर, अब वो जाते तो उलमा के पास है और जाके कहते हैं ये क्यों ऐसे वो क्यों ऐसे, पास चीजों का जवाब उलमा के पास नहीं होता। उलमा को अकले कुल थोड़ी है कि उनके पास हर चीज का जवाब हो कि अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों किया तो हम इसका जवाब दें। भाई तुम क्यामत के दिन जाके खुद ही पूछ लेना, तुम्हें इतने तराज आते हैं, अगर तुम कोई चीज छिन जाए तो ये क्यों छिनी मुझसे, ये क्यों ऐसे हो गया, फलानी चीज उसने ऐसे क्यों बनाई, अब इतराज करने लगे तो सात आसमान क्यों बना दिए, जमीन ऐसी क्यों बना दी, फलान चीज ऐसी क्यों। कुछ लोगों की जुबान पे हर वक्त ही कोई ना कोई बात के ऊपर इतराज, अपनी तरफ से सवाल कर रहे थे लेकिन उसके तरह इतराज होता है, जबकि इबादत के अंदर है ही क्या, क्या इंतहा दर्जे की मोहब्बत है आपको अल्लाह ताला से कि उसकी मोहब्बत से ऊपर किसी की मोहब्बत ना, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कुरान करीम में, अल्लादीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं। ऐसे नहीं कि सारी दुनिया से तो आप मोहब्बत करें, अल्लाह ताला सिर्फ इसलिए कि हम उसे सिर्फ जब हमें कोई मुश्किल हो तो फिर उससे हम दुआ कर लेते हैं, या हमें कुछ और चाहिए हो तो फिर हम उसे मांग लेते हैं, तो बस उसके लिए तो अल्लाह ताला है, बाकी मोहब्बत के लिए तो हमारे और रिश्ते हैं। कभी मोहब्बत भी करके देखी अल्लाह सुबहाना ताला से, जिस दिन आप अल्लाह ताला को पहचान लेंगे ना, आप उससे ज्यादा किसी से उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। हमारी बदकिस्मती है कि हमने उस रब को ही नहीं पहचाना जो हमारा मालिक है और खालिक है, जो रहमान और रहीम है, जो हमारा रब है, हमारा पालने वाला, हमने उससे ही मोहब्बत नहीं करके देखी। और झुक जाना, जो बिछ जाए झुक जाए, ये है इबादत। कितने झुके हुए हैं, कितने बिछे हुए हैं, अगर जुबान पे हर वक्त गिले शिकवे हैं तो क्या बिछे हैं। और हम तो अपने बॉस को उस तरह क्वेश्चन नहीं करते, खुदा की कसम, जैसे लोग अल्लाह ताला के बारे में क्वेश्चन करने के लिए आ जाते। वो अपने बॉस को जाके क्वेश्चन करे ना तो अगले दिन वो बाहर खड़े होंगे, डरते हैं कि हमें निकाल दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह से इनको डर नहीं लगता कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये होती है इबादत। इबादत सिर्फ ये 5 वक्त नमाज पढ़ ली, हमने ये कर लिया, हम तो बहुत अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। इबादत तो पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला की बंदगी, कि जिंदगी के हर हर गोशे में अल्लाह ताला के कानून को मानना और उस पर चलना, ये है इबादत। तो इबादत का मफहूम समझना जरूरी है, और ये मोहब्बत के जज्बे के साथ की जाएगी, उसके कानून को मानना उस पर चलना, तो क्या मानना ही बड़ा मुश्किल है। एक उन्होंने सर्वे किया कि अगर शरीयत नाफिज कर दी जाए आपके मुल्क में तो हो इतने मुल्कों का मुस्लिम ममालिक का सर्वे किया, हैरत है कि हर जगह 50% से भी कम लोगों ने कहा कि हाँ हम शरीयत को कबूल करने को तैयार। इतना डरते हैं अल्लाह के कानून से। तो ये कवानीन मानना, अल्लाह की इताअत करना, लेकिन मोहब्बत के साथ। और कितनी मोहब्बत, अल्टीमेट इंतहा दर्जे की, कि उससे ऊपर किसी की ना। तो सिर्फ तेरे से हम इसको अब खोल के देखें आप, सिर्फ तेरे से हम इंतहा दर्जे की मोहब्बत करें। ये जो आप इबादत का लफ्ज कह रहे हैं ना, अब इसको ओपन करें, इंतहा दर्जे की मोहब्बत हम सिर्फ तुझसे करते हैं। और इंतहा दर्जे की आजी, झुकाओ और बिछ जाना सिर्फ तेरे लिए, जो सारी ना उठा सके वो फिर बातें क्या बनाएगा, वो नाफरमानी कैसे करेगा। जो सारी ना उठा सके उसका तो सारे इताअत में झुकाव है। और मोहब्बत इतनी है कि मोहब्बत के साथ इताअत करता है। जो इताअत मोहब्बत के साथ होती है वो कितनी खूबसूरत होती है, वो कैसी प्यारी होती है। आपका एक बच्चा है, आप उसको कुछ कहते हैं करने को, वो हूँ वहाँ करके करता है, और मुंह चढ़ा के करता है, और बातें बना के करता है, और उठता ही नहीं है, और बड़े। और एक है मोहब्बत से भाग भाग के, उसको मोहब्बत इतनी है वो भाग भाग के करता है। क्या अच्छा लगता है आपको। हम अल्लाह ताला की बाज दफा इताअत कर भी लेते हैं, बात काम में मान भी लेते हैं उसके हुक्मों को, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कूड़ा नहीं होती है, अच्छा नहीं लग रहा होता मानना, मोहब्बत नहीं होती। तो मोहब्बत के साथ रोजे भी रखने लगते, हाय वाय के साथ। कहाँ गई आपकी मोहब्बत? हाजे तो आए मुसीबत, आए मसला, आए गर्मी, आए क्या से करेंगे। हर चीज में ही हमारे लिए मुश्किलात हैं। जहां पे मोहब्बत होती है वहां पे मुश्किल तो कुछ रहती ही नहीं। वहां पे इंसान की स्पीड भी तेज हो जाती है, एनर्जी भी आ जाती है, मजा भी आने लगता है। मोहब्बत जो होती है, कभी मोहब्बत का मजा चख के देखा हो हमने तो फिर हमें पता चले ना। अब हम मोहब्बत का मजा ही नहीं कभी चखा तो फिर इताअत में मजा कैसे आएगा, इबादत में मजा कैसे आएगा, नमाज में मजा कैसे आएगा, अल्लाह के जिक्र की लज्जत कैसे मिलेगी। ये तो लज्जतें उनको हासिल होती हैं जिनको मोहब्बतें होती हैं, इसीलिए फिर वो थकते भी नहीं, इसीलिए फिर वो रुकते भी नहीं। तो इया का नाबुदू ऐसे ही है। अब देखें, वैसे तो हम की कोई मिसाल भी नहीं दे सकते, सिर्फ ये ऐसी मिसालें इसलिए देती हूँ ताकि आपको ना थोड़ी सी बात समझने में आसानी हो जाए। जैसे कोई लिखता है ना, महबूब अपनी महबूबा को लिखता है ना, सिर्फ तुम्हारा फलां फलां, लेटर के एंड में लिखा होता है ना सिर्फ तुम्हारा। वो ये क्यों नहीं लिख देता तुम्हारा भी, और मैं औरों का भी, फलानी का भी, और फलानी का भी, और तुम्हारा भी। तो क्या हो गया, तुम्हारा तो हूं ना। नहीं, सिर्फ तुम्हारा लिखता है, और वो महबूबा भी चाहती है ये सिर्फ मेरा हो, और वो भी चाहता है ये सिर्फ मेरी हो। तो अल्लाह ताला चाहता है ये बंदा सिर्फ मेरा हो, औरों का नहीं, कि अल्लाह का भी हो जाऊं। और चलो अल्लाह ताला की भी इबादत कर ली, अब मानना तो ठीक है, हम अल्लाह की भी मानते हैं, लेकिन लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी है। अल्लाह की छोड़ के फिर दुनिया की भी मानते हैं, फिर अल्लाह की छोड़ के फिर खानदान की भी मानते हैं, फिर अल्लाह की छोड़ के बच्चों की भी माननी पड़ती। या का तो नहीं ना हुआ फिर, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, यानी सार से टॉप पे तेरी बात है, बाकियों की बातें अल्लाह ताला की बात से मैच करें, वेल एंड गुड, नहीं मैच करती उनकी बातें छोड़ देनी, अल्लाह ताला की बात नहीं छोड़नी। और होता क्या है, हम अल्लाह सुभान तआला की बात छोड़ देते हैं और उनकी मान लेते हैं, क्योंकि उनकी भी तो चलनी है ना, फिर उनके साथ भी तो गुजारा करना। तो जब या का नाबुदू कह दिया तो आपने समझ लिया, ये कह दिया सिर्फ तेरी, सिर्फ और सिर्फ तेरी। ये जो जैसे वो नीचे लिखा होता है लेटर में सिर्फ तुम्हारा, इसी तरह आपने कह दिया सिर्फ तेरा। अल्लाह मैं सिर्फ तेरा हूं, मैं और किसी का नहीं, सिर्फ तेरा हूं। मेरा तो तेरे सिवा कोई और है ही नहीं, मैं किसी किसी और का हूं ही नहीं तेरे सिवा, मैं तो सिर्फ तेरा बंदा हूं। ये हलफ उठा लिया, आज भी तेरा हूं। और नाबुदू ये देखें, जब ये शुरू में नून आ गया ना, तो ये फेले मुजारे बन गया। थोड़ी सी आप इस चीज को समझ लें तो आगे आपको आसानी होगी। फेले मुजारे का मतलब ये होता है अरबिक के अंदर कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस के लिए एक ही वर्ड होता है, अलग अलग नहीं होते। जैसे हम उर्दू में तो प्रेजेंट के लिए मैं आती हूँ और मैं आऊंगी, ये फ्यूचर के लिए होगा। लेकिन अरबिक के अंदर एक ही लफ्ज़ में हाल और मुस्तकबिल दोनों के माने होते हैं। तो जब हम नाबुदू कहते हैं तो ये मुजारे या मतलब, इसमें मुजारे का मतलब होता है कि इसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों टेंस हैं। तो तेरी इबादत मैं आज भी करती हूँ और करती रहूंगी, आपने कसम खा ली, अहद कर लिया, हलफ उठा लिया आपने, मैं करती रहूंगी। ठीक है, सिर्फ आज ही नहीं तेरी बंदी, कि आज तेरी बंदी हो, मुसल्ले से उठी तो फिर अल्लाह की बंदी नहीं, फिर अल्लाह की इबादत क्या? बस वो तो मस्जिद में जाते हैं तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, रमजान आता है तो अल्लाह की इबादत करते, नहीं करती रहूंगी। अल्लाह हू अकबर। तो बड़ी मोहब्बत की ये बात है, इसीलिए जब इंसान यहां पहुंचता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, बस अब मेरा बंदा जो भी मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। अल्लाह हू अकबर। और आगे इयाक नस्तईन को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम देखेंगे, यहाँ तक ही आज रखते हैं हम। और जो पढ़ा है जैसे मैंने आपको कहा, उसी को आपने देखना है, उसी को आपने पढ़ना है दोबारा घर पे, कि इसमें आज मैंने क्या सीखा। तो अमल की बातें एंड में आपने ज़रूर लिखनी, आज अमल की बातें क्या हैं, रहमान की रहमत के नज़ारों को महसूस करें और उन पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कम अज़ कम हर दिन तीन चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखें और उसके ऊपर रब की रहमत को महसूस कीजिए। फिर आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या अपने हर काम, हर चीज़ के ऊपर, हर बात के ऊपर, चाहे मेरी मर्ज़ी की हो या नहीं हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ या नहीं। नहीं कहती तो अमल की बात में लिख लीजिए कि मैंने आपसे कहना है मालिक यौमिद्दीन से। सोचे कि एक दिन है जो बदले का है, मैं आज जो बो रही हूँ, क्या मैं इसको काटने के लिए कल तैयार होंगी? आज मैं क्या क्या मेरे एक्शंस हैं, यही मुझे कल इनका जवाब देना होगा, इन्हीं का बदला तो मिलेगा मुझे। या कनाबुदू में तो बहुत कुछ सोचने का, मैंने हलफ तो उठा लिया, वफादारी निभा रही हूं या नहीं। इबादत का माना क्या है, इबादत के वाकई माने को मैंने समझा भी आज तक या नहीं, और मैं जैसे माना है उसके मुताबिक मैं इबादत कर भी रही, या मेरे लिए सिर्फ ये एक वर्ड है इबादत इबादत आज तक सुनते रहे। अल्लाह ताला हमें अपने मुखलिस बंदों में शामिल फरमा ले। तिलावत सुनिए यहाँ तक। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين